نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة بني اسرائيل 15 پارے کا آغاز ہے یہاں چند باتیں سمجھنا لازمی ہیں سورة کو شروع کرنے سے پہلے پہلی بات دیکھئے کہ پچھلے مذاہب جتنے بھی دنیا میں آئے ان میں سے واحد بنی اسرائیل قوم ہے کہ جن کے نام پر سورت موجود ہے قرآن میں یہاں سے اگر ہم کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہ اشارے سمجھیں کہ کیسے اس نے ہم مسلمانوں کو پچھلی قوموں کے حالات سے سبق لینے کا بتایا حتیٰ کہ نصارہ نام کی کوئی سورت نہیں اور اسی طرح سے باقی چیزیں تو بنی اسرائیل حقیقت میں واقعی پھر اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے لیکن کیا ہوا سورت کے آغاز میں ہی ہم دیکھیں گے سورت بنی اسرائیل نام سے بھی لگ رہا ہے اور اس کے شروع میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک قصہ آئے گا اسی قوم کا جس سے ہمیں ہم سب کو اپنے اوپر دیکھنے کی مہلت ملے گی اگر آپ اس پورے پارے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو قوموں کے عروج اور زوال کی کہانیاں ملیں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جب تم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہو تو تمہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ قومیں بھی سورج کی طرح کبھی چڑھتی ہیں کبھی ڈوبتی ہیں اور وہی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بھی ایک وقت وہی تھا کہ خورشید کی مانند ہم اس دنیا میں جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے حقیقت ہے کہ مسلمان زمین کے کسی کونے میں ہو مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو وہ ہر طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنیوں کا پیامبر ہوتا ہے رہ گئی سورت بنی اسرائیل تو سورت بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر آپ کو لفظ قرآن بار بار ملے گا اور حقیقت ہے کہ قرآن کو اس وقت میں اور آپ بڑے پیار اور محبت سے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیجئے کہ اے اللہ مجھے قرآن سمجھ آئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کبھی ان کو قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کچھ بھی تو وہ کہتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھ کو بھی علم دے یا مفہم سلیمان فہمنی اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھ کو بھی فہم دے تو یاد رکھیے کہ جتنا اس قرآن کو پڑھتے وقت ہماری نیت صاف ہوگی ہم اچھے دل سے پڑھیں گے اتنا ہمیں یہ سمجھ آئے گا پھر دوسری بات ہے کہ یہ سورت بنی اسرائیل جس کے اندر ہمیں پہلی ہی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے تو اس واقعہ معراج میں بھی اصل میں امت کے لیے بہت بڑے بڑے میسج تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ معراج کے موقع پہ گئے تو وہاں آپ کو حجامہ کا حکم دیا گیا آج امت بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے تو حجامہ آج کے دور میں الحمدللہ متروک سنتوں میں سے ایک سنت جو اس وقت زندہ ہو رہی ہے پھر اسی طرح آپ کو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام امت کی طرف بھجوایا گیا یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کا سلام پہنچایا گیا تو یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کے سامنے ہے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے دور کی مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت ہے کہ وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بات کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکی دور کے آخری دور میں تھے دنیا کے دو مضبوط سہارے آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے یک بدیگرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کی زندگی میں آپ کی محسنہ اور معاونہ تھی اور ابو طالب جو باہر کی زندگی میں آپ کے لیے بہت بڑی ڈھال بنے ہوئے تھے اللہ نے ان دونوں کو سن 10 نبوی میں لیا اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو اداس رہنے لگے دکھی رہنے لگے اور حقیقت ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں لیکن اس آیت سے آپ کو دکھی لوگوں کو کس چیز سے اپنے دکھ کو بانٹنا اس کا جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کائنات کی سیر کروائی اور حقیقت ہے کہ جو کام اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پہ کروایا گیا وہی کام آج قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے وقت ایک ایمان والے کا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں دوسروں کے دکھ یاد آتے ہیں نظر آتے ہیں تو اپنے دکھ بھولنے لگتے ہیں اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے نبی کو معراج کے لیے لیا گیا قرآن پاک میں واقع معراج دو مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا ایک ادھر اشارہ ہے اور دوسرا سورت نجم میں ڈیٹیلز ہیں नबी सल्लम का ये सफर दो हिस्सों में था। पहला सफर जिसको अब असरा कहते हैं, असरा का मानी होता है रात के वक्त में किसी का सफर करना, तो ये बैतुल्ला से लेकर बैतुल मकदस तक जमीनी सफर था। बुराक के जरिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के साथ थे, आपको जमीन से सफर कराया गया, जिस दौरान आपको सबसे पहले तो अपना महजर यानी मदीना दिखाया गया, क्योंकि असल में जब हिजरत मदीना की तैयारियां थी कि छोड़ दें इन बेकदरे और नाकदरे लोगों को, ये आपके बात सुन नहीं समझते, मक्का को छोड़ना है, तो पहले दिखाना था क्योंकि हिजरत की राहें हमने पीछे पड़ी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप मदीना गए थे। इसी तरह रास्ते में पिछली कौमों के कुछ वाकया देखते हुए अल्लाह के नबी बैतुल मकदस पहुंचाए गए, वहां आपका बुराक बांधा गया। अल्लाह के हुक्म से वहां पिछले तमाम अंबिया कराम मौजूद थे, आपने इन सब की इमामत कराई, इसीलिए आपको सैयदुल मुरसलीन कहा जाता है। फिर वहां और बहुत खूबसूरत वाकयात हुए थे, यहां तक इस जगह इसी का जिक्र है। असल में वाकया मेराज क्या था? तब्दीली उम्मत का सफर था। जिस तरह पीछे दूसरे पारे के शुरू में हमने पढ़ा कि यहूद ने जब अपनी जिम्मेदारियों को अदा न किया तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की उम्मत को यह ओहदा दे दिया, वकजालिका जालनाकुम उम्मतम वसता की सूरत में। यहां आप देखेंगे कि नबी सल्लम के मक्की दौर के खात्मे पे मदीना वालों को आपका मुआविन बना दिया गया। और एक जुमला दिल खोल के सुन लें कि अल्लाह को मेरी जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह मुझे नेकी का कोई मौका देता है और मैं नखरा करूं और मैं ना मानूं, अल्लाह कुछ अरसा मुझे मोहलत देता रहेगा, उसके बाद अल्लाह ताला मेरे हाथ से ये शान लेकर किसी और को दे देगा। अल्लाह ताला अपने काम कभी रोकता नहीं है। मक्का वालों को 13 साल की मोहलत दी गई, संभल जाओ संभल जाओ, और किस तरह अल्लाह के नबी ने उनका तज़किया तरबिया किया, कहने को कह लीजिए कि कुछ बाकी नहीं रहा। एक एक बंदा जिसके दिल में हक आ सकता था अल्लाह ने उसको दिया, और उसको समझ आ गई कि यही असल में दौलत है जिसको पाना है। लेकिन जो ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना भेजे गए तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो अपनी पुरानी रविश में आने लगे, तो ये इंसानों की नाशुक्री होती है। तो लिहाजा यहाँ अब आपको मुझे एक बहुत खूबसूरत तरीके से वो सोच दी जा रही है कि कायनात के राज पहचानो, निशानियां क्या थी कि जो लोग अल्लाह के रास्ते के काम करें फिर उस पर फख्र ना महसूस करें, उसको अपने लिए एक ऑनर ना समझें, तो अल्लाह फिर ज्यादा दिन उनको इस कॉस्ट्यूम को पहनने का मौका नहीं देता। बाज लोग सिर्फ नेकियों का कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अभी अंदर कुछ ना कुछ नफ्स की शरारतें होती हैं। तो बहरहाल वाकया मेराज पर डिटेल से बात मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, शबे मेराज और गालिबन उसी से रेलिवेंट कुछ नाम है, आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद होगा अल्लाह के हुक्म से, आप सुनिए। बहुत ही ईमान अफरोज वाकया, उस मौके पे 5 नमाजें फर्ज हुई, तौहीद वालों के गुनाह माफ होने की बात आई, एक नेकी को कम से कम 10 के मल्टीपल के साथ किया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी इन चीज़ों को लेने की तौफीक अता फरमाए और हम इन चीज़ों को अपने साथ रहें। फिर इसके बाद अगली आयत जो बहुत ही तवील है, मैं इकट्ठी पढ़ूंगी, तो इसमें चूंकि इस वक्त उम्मत वसत का मौजू है तो इनको थोड़ी सी बात करूंगी, शायद हम इसको ओवरलुक कर देते हैं कि बनी इसराइल की हिस्ट्री है, लेकिन आज मुसलमानों के हालात इसको ओवरलुक करने देते नहीं। आइए देखते हैं आयत नंबर 2 से, वातैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, हमने इससे पहले मूसा अलैहि सलाम को किताब दी थी और इसे बनी इसराइल के लिए जरिया हिदायत बनाया था, किससे पहले? इस कुरान से पहले। तो पता चला कि अल्लाह की तरफ से जो किताबें दी जाती हैं असल में वो इसलिए होती हैं कि लोग उससे नसीहत हासिल करें। तौरात का पैगाम क्या था? इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना वकील न बनाना, तुम इन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और नूह एक शुक्रगुजार बंदा था, फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी वॉर्न कर दिया, उनको आगाह कर दिया कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसाद अजीम बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब इनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया तो बनी इसराइल हमने तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए जो निहायत जोरावर थे, वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए, ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें इन पर गलबे का मौका दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी, देखो तुमने भलाई की तो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी और बुराई की तो तुम्हारी अपनी ही जात के लिए साबित हुई। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इन अक्सन तुम लियान फुसिकुम, जो नेकी करता है अपने लिए करता है, वही नसा तुम फलहा, और जो बुराई तुमने की वो तुमने अपने लिए की। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मकदस में इस तरह घुस जाए जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज पर इनका हाथ पड़े इसे तबाह करके रखते हैं। हाँ लेकिन असा रब्बुकुम अय्यरहमकुम वइन उत्तुम उद्ना वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, लेकिन याद रखो हो सकता कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर पुराना तरीका दोहराया तो हम भी अपनी सजा को दोहराएंगे। और हकीकत है कि नेमतों की नाकदरी करने वाले यानी काफरे नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नम को एक कैद खाना बना रखा है। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल की हिस्ट्री के चार मुख्तलिफ अदवार हमने इन आयतों में पढ़े। नबी सल्लम के दुनिया में आने तक बनी इसराइल के चार मुख्तलिफ दौर गुजर चुके थे, जिसमें दो उरूज के थे और दो जवाल के थे। इनके उरूज का पहला दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 300 साल बाद शुरू हुआ और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर बनी इसराइल के उरूज का दौर था। उसी दौर में ये टेम्पल ऑफ सुलेमान यानी जो हैकले सुलेमानी ये तामीर किया गया, लेकिन इसके कुछ अरसे के बाद इनके जवाल का दौर शुरू हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की जो कौम थी वो दो गिरोहों में बट गई, फिरका वारियत आ गई, नस्ली तासुब आ गया, कुछ इसराइल कहने लगे खुद को, कुछ यहूदा से नस्बत करके जूडास यानी यहूदियत के नाम पे आने लगे। जब कोई अल्लाह की चुनी हुई कौम फिरकों में बटती है, ये अल्लाह की तरफ से एक चैलेंज होता है कि अब दुश्मन इन पे हुकूमत करेंगे, कब्जे होंगे, मारेंगे, इनको खूब नगे देंगे। यही हुआ, इधर इस कौम के अंदर बंटवारे शुरू हुए, तफरकाबाजी में बट गए। उधर अल्लाह ताला ने सीरियंस को इन पर भेजा। सबसे पहले शिमाल की तरफ से सीरियंस इन पर आए और इन्होंने इन पर हमला किया, तहस नहस कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। इनके 12 कबीलों में 10 कबीले उस वक्त से गायब है। आज तक इसराइली हुकूमत अपने उन 10 कबीलों को ढूंढ रही है। उसको द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द हाउस ऑफ द बनी इसराइल कहते हैं। कौमें बिखर जाती हैं, याद रखिए, धागे की धजियों की तरह अल्लाह भिजवाता है और दुश्मन उनको मसल देते हैं। फिर इसके बाद इनका एक दूसरा दौर शुरू हुआ। अभी सारी बस्तियों में इनको मारे पड़ी, तड़पे तड़पे, लेकिन फिर मशरक से दूसरी तरफ बाबुल के बादशाह बुख्त नसर ने इन पर 586 में हमला किया और सबको हांग के भेड़ बकरियों की तरह बाबुल ले गया। बाबुल वही जिसको आज इराक कहते हैं, बेबिलियनिस की ये कहानी है। और वहां जाकर फिर हैकल को तबाह किया, बनी इसराइल मर के कैद में गए। हत्ता कि आपको बताया कि एक वक्त ऐसा है कि जब उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस की उजड़ी हुई बस्ती के पास से गुजरे तो कहा कि इसको कैसे वहां जिंदा करेगा। अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर उनको फौत किया। 100 साल तक वो वहां रहे और उस दौरान दोबारा इस कौम का रिवाइवल हुआ। किसी ने इनको पकड़ा जब हजरत उज़ैर जिंदा किए गए, उनको तौरात अपने हाफसे से याद थी। इनके इस मौत के दौरान बनी इसराइल पर इतना सवाल आया कि दुश्मनों ने इनके सब किताबें जला दी। इनको ये तक याद ना रहा कि तौरात किस जुबान में नाजिल हुई। फिर हजरत उज़ैर ने अपने हाफजे की मेमोरी के साथ तौरात लिखाई और उस वक्त फिर इनको जमा किया। फिर इधर से ईरान के बादशाह ज़ुल्करनैन जो थे वो सामने आते हैं और उन्होंने इस पर बाबुल पर हमला करने और बुख्त नसर के लश्कर को शिकस्त दी। अब इनका दूसरा उरूज शुरू होता है और फिर दोबारा फलस्तीन ले जाने की इनको इजाजत मिली। ये ज़ुल्करनैन को अपना मोहसिन समझते हैं, इसीलिए इस बनी सूरत कहफ में आप उनका जिक्र भी पढ़ेंगे। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई सूरतें हैं, इनके आपस के वाकयात है। बहरहाल कैसा किस्सा मुख्तसर के फिर इनका दूसरा अरूज हजरत जकरिया और यहया के दौर में शुरू हुआ, जब हजरत ईसा का दौर था। इतना बीच में लंबा अरसा है, लेकिन 100 साल तक इनको अरूज मिला। उस वक्त इन्होंने तौरात को नाफिज किया। उस वक्त दुनिया में तौरात ऐसी इम्प्लीमेंट की गई जैसे आज कुरान को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जब कोई कौम अपनी किताब को जमा लेती है, अल्लाह उसको जमा लेते हैं। फिर दोबारा हैकले सुलेमानी कायम हुआ, यही नक्सन तुम अक्सन तुम। जब कौमें अच्छा करती हैं अल्लाह उनको अच्छा देते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, वही हुआ, रफ्ता रफ्ता जवाल, बैरूनी दुश्मनों से मुतासिर हुए। याद रखिये बनी इसराइल की हिस्ट्री और आज मुसलमान की, कभी इनके ऊपर जवाल जो है वो बाहर से नहीं आया, अंदर से नजरियात बदल गए, अखलाकी पाबंदियां बदल गई। रोमन्स एंड यूनानीज यानी ग्रीक्स एंड रोमन से ये इतने इंप्रेस थे कि शिर्क इनमें आ गया, उनके रंग ढंग आने लगे, कल्चरली उनको अपने आप मोहसिन समझने लगे, उन्हीं की तरह इबादत के तरीके हुए। खुद इन्होंने रोमन्स को मदऊ किया कि आइए हम पे हुकूमत करें। अब बताइए माजी की बातें लगती हैं? जब आज मुसलमानों की तारीख क्या छोड़िए हाल पढ़ते हैं तो आपको रोना नहीं आता। फिर 63 BC यानी हजरत ईसा से सिर्फ 63 BC जनरल पोम्पाई जो था उन्होंने इन पर कब्जा किया और फिर इनको खूब किया। नाम का यहूदी था, इस शख्स ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर अपनी महबूबा यानी प्रोस्ट के लिए एक तवायफ थी, कहने लगी मुझे यहया नहीं अच्छे लगते, ये हर बात पे तनकीद करते हैं। उन्होंने जिना से रोका था तो उसके ऊपर फिर उसने हजरत यहया को कत्ल किया और उनका सर अपनी महबूबा को पेश किया। फिर इसी तरह होते होते जनरल टीटस ने इन पर हमला किया और इस तरह इनका टेम्पल ऑफ सुलेमान ने उसको गिरा दिया। सिर्फ एक दीवार इनकी बची है आज तक है, जिसको दीवारे गिरिया कहते हैं, वेलिंग वॉल कहते हैं, वहां जा जा के आज भी ये रोते हैं। इनकी अपनी हिस्ट्री पढ़ के देखें, एक एक लफ्ज जैसे जूते पे जूते का पहुंच जाता है, इस तरह मत मुस्लिमों के हालात हैं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बनी इसराइल का दाखिला बैतुल मकदस में ममनू था, उनको वीजा नहीं मिलता था। हैरत हो रही है, इसराइल में देखे एंड एंटर। पहली दफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इनको बैतुल मकदस में आने की इजाजत दी। 600 साल तक ये पैलेस्टाइन में दाखिल नहीं हो सके। याद रखिए अल्लाह ताला की ये बातें, तो इन सारी आयतों में ये चार अदवार पेश किए गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, इन्हीं लोगों को कहा गया कि इस शख्स को मान जाओ, ये वही है जिसका तुम्हें वादा किया गया था, मानते तो असार रब्बु को मैं यरहमकुम, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, मुसलमान हो जाओ। लेकिन उन्होंने अल्लाह की इस दावत को ठुकरा दिया। अब मैं और आप जरा इसको अपने ऊपर लेकर सोचें, अगर आप इन सारी चीजों को गौर से सुन के अपने हालात पे टैली करेंगे, तो आपको उम्मत मुस्लिमा के आज सबसे बड़े मसाइल की वजह समझ आएगी। जब उम्मत फिरकों में बढ़ती है और जब किताब को छोड़ती है, और हकीकत में किताब को छोड़ना ही फितनों में पढ़ना और अपने आप को फिरकों में बांटना है। आज हम मुसलमान क्या करें? क्या हमारी रुजो जवाल की कहानियां सुनाऊं? वो तो आप अखबारों में पढ़ लें। आज से लेके 20 25 30 साल पीछे की जरा अखबारें जमा करके आप भी तो मुसलमानों की हिस्ट्री लिखें, आपको इसमें से बहुत कम चीजें फर्क लगेंगी। तो अल्लाह ने हमें सबको यहाँ मौका दिया। आज इस साल के इस दौरे कुरान के जरिए अगर हम जमीन के चप्पे चप्पे पे ही मुसलमानों को ये पैगाम दे दें, तुम नहीं पनपोगे जब तक तुम अपनी किताब की तरफ वापस नहीं आओगे, और तुम नहीं पनपोगे जब तक तुम अपने नामों को इस्लाम के नाम के साथ जोड़कर फिरका वारियत के तासुब से नहीं बचोगे। दुश्मन पहले मुसलमानों को तोड़ता है, फिर उसके बाद जब वो फिरकों में बढ़ते हैं उनकी ताकत कम होती है, फिर किताब की बजाय उनको छोटी छोटी फिक्रें, छोटी छोटी बातें, नाम, शख्सियात इतने बड़े कर देता है, और फिर लोग आपस में लड़ते हैं। दुश्मनों ने बहुत कम लोगों को अपनी तलवारों से मारा, उन्होंने मुसलमानों को मुसलमानों की तलवारों से मारा। मैं और आप अगर इस बात को आज समझ जाएंगे, तो आज से मुसलमानों के अरूज का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। हम अभी भी मस्ती करना चाहते हैं, मस्तियों में कुरान मुश्किल लगता है, बोझल है, इसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते, इट्स टू मच टू रीड और अंडरस्टैंड और लर्न, घर बैठ के 5 सुपारे पढ़ लें। तो याद रखिए, फिर जितना मर्जी डिले कीजिए, ये हमने आपने खुद इस्लाम के अरूज को रोका हुआ है। आज उम्मत उठे, और उम्मत उठ गई है किसी हद तक, जितनी जल्दी उठेंगे ये काम होगा, होगा उसी दिन। अब यूएनओ के किसी प्लेटफॉर्म में अगर मुझे इस वक्त भी ले जाएंगे ना, तो मैं वहां पूरे यकीन और कॉन्फिडेंस से ये बात कह के आ सकती हूँ कि मुसलमानों के हकूक तब मिलेंगे उनको जब वो अल्लाह की किताब को उसका हक देंगे। दैट्स इट। 100 बातों की वजह से आप ये करेंगे, आप मेहनती भी हो जाएंगे, आपको आखिरत का डर भी होगा, फिर आप रिसर्चेस भी करेंगे, आप साइंस में भी जाएंगे, फिर आप दुनिया की भी तरक्की करेंगे। जब मुसलमान असल किताब से कटते हैं खुशफहमियां, ये कर लो तो जन्नत, वो कर लो तो जन्नत, ये वजीफा पढ़ लो। आज भी लोग जब आपके बस एंड पे आते हैं ना दर्स के, 98% ये यकीन होता है वजीफा पूछेंगे, दुआ बता दे, वजीफा बता दे। मैं कहती वजीफा ये कि आप कल के पारे में 10:30 बजे यहां पहुंचे, वो तो मैं कोशिश करूंगी, मुश्किल है, वजीफा बता दे, दुआ करा दे, क्या करें, कोई वजीफा, कोई बात, कोई आयत का वेर। याद रखिए, ये आज का मसला है। सहाबा कराम के आप दौर को पढ़ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 23 साल रहे, एक सहाबी की कोई, मुझे तो रिवायत नहीं मिली कि किसी मुश्किल में पड़े और आपके पास आए, अल्लाह के नबी वजीफा बता दें। बिलाल आ जाते, अल्लाह के नबी वजीफा बता दें, बड़ा उमैया जुल्म करता है। हुबैब आ जाते, अल्लाह के नबी को वजीफा बता दें, अल्लाह के नबी को पानी पे दम कर दें, कोई तवीज पहन लो। यकीन करे, दिल जले से ये बात कर रही हूँ कि आज उमैया जो टोने टोटकों में पढ़ के सोचती है मुसलमान है, ये सिर्फ झूठी निशानी है इस्लाम की। ऐसे कुरान से कोई फायदा नहीं होगा, आप पूरा कुरान गले में लटका लें, एक आयत दो आयत से क्या होगा, अगर आपका अपना दिल मुसलमान नहीं। ये आसमान पे अल्लाह ताला फैसले जो करते हैं ना मुसलमानों के मुकद्दर के, ये ईमान वालों की नजरों से करते हैं। मुसलमान किसी को ऐसे घूर के देख जाते थे, उसकी जान निकल जाती थी। आज हम इतने हो गए, कपड़े पहन लिए, जूते ले लिए, हमारा रोब नहीं बना। उधर हाल अभी आप पढ़ेंगे सूरह कहफ में कि किस तरह वो गार में सोए हुए और उनका रोब है इतना। तो मुसलमान का रोब अपनी किताब पे। अब इस पूरी सूरत बनी इसराइल में आपको मुझे पस्ती से निकलने के रास्ते बताए जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे यहाँ पढ़ाते हुए ऐसे ही फील हो रहा है कि हम दोबारा दूसरे पारे पे आके, वही तरतीब 32 पारे की भी, कि जैसे वहां पहले उम्मत को झंझोड़ा जरा किया, फिर उसके बाद लैसल बिर्रा वाली आयत में बिर नेकी का एक वाज़ेह तसव्वुर दिया, और फिर मना मना बिल्लाह से होते होते एंड पे तलाक और इद्दत की सारी बातें पेश करके मईशत मुआशरत हत्ता के जाती जिंदगी की खुशी गम बता दी कि इसको किताब के जरिए कर लो। आपको सूरह बनी इसराइल सिर्फ रिवीजन लगेगी, है इसमें हजारों बातें, लेकिन आप सारी पढ़ चुके हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आज आपने इससे एक सोच के साथ इसको लेना है कि इसमें अल्लाह ताला जो कुछ भी दे रहा है उसको 1, 2, 3, 4 अगर कर सके पॉइंटिंग ऊपर आयतों के करते जाइए। ये है उम्मत के बस्ती से निकलने के रास्ते।